प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने प्रदर्शनों में मास्क और बालाक्लावा के इस्तेमाल को सीमित करने वाले नए कानूनों का समर्थन किया है। ये नियोनाजी गतिविधियों पर राष्ट्रीय कार्रवाई का हिस्सा है। ये घोषणा उस घटना के बाद आई जब सप्ताहांत में लगभग 60 पुरुषों ने काले कपड़ों में न्यू साउथ वेल्स संसद के बाहर एक फार राइट रैली की, जिसमें एंटी सेमिटिक यानी यहूदी विरोधी संदेश दिए गए। एंथनी एल्बनीजी ने एबीसी रेडियो से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे ढकने पर रोक लगाने के राज्य सरकारों के प्रयास पब्लिक सेफ्टी यानी सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित हैं। इसी बीच न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मैल लैनियन ने कहा कि उन्हें सिडनी नियोनाजी रैली के बारे में कम्युनिकेशन एरर के कारण जानकारी नहीं दी गई थी, और अगर उन्हें इस प्रदर्शन के हाई प्रोफाइल नेचर के बारे में पता होता तो वो कानूनी कार्रवाई पर विचार करते। यहूदी समूहों ने पुलिस के इस प्रदर्शन को अनुमति देने के फैसले की निंदा करते हुए इसे अकल्पनीय बताया और ऑस्ट्रेलिया में फार राइट एक्सट्रीमिज्म को लेकर जारी चिंताओं की भी बात कही। पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड का कहना है कि 50 साल पहले कॉग विटलेम की बर्खास्तगी ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को लोकतंत्र के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उस समय जॉन हॉवर्ड मैल्कम फ्रेजर के अधीन एक जूनियर शैडो मंत्री थे और विपक्ष में उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सप्लाई ब्लॉक करने के कदम का समर्थन किया, जिससे 1975 का संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ। घटनाओं पर विचार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड ने कहा कि इस घटना ने दर्शाया कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान टिकाऊ और कार्यक्षम दोनों ही है और अंत में मतदाताओं को अपनी सरकार चुनने का मौका देता है। कॉमनवेल्थ बैंक ने तिमाही कैश प्रॉफिट $2.6 बिलियन दर्ज किया है, जो पिछले साल की तुलना में 2% अधिक है। ये होम लोन्स और डिपॉजिट्स में मजबूत वृद्धि के कारण हुआ। ये परिणाम ऐसे समय में आया है जब पूरे सेक्टर में मॉर्गेज की मात्रा तेजी से बढ़ी है, जिसे इस साल रिजर्व बैंक के 3 दर कटौती का समर्थन मिला। ऑस्ट्रेलिया का हाउसिंग मार्केट पिछले 4 साल में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोन की मांग और मॉर्गेज की राशि में भी बढ़ावा हो रहा है। सीबीए के अनुसार लोन एरियर्स स्थिर हैं और पर्सनल लोन की रीपेमेंट्स में पिछड़ने वाले बोरोवर्स की संख्या कम है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड वॉर वन में लड़ाई को समाप्त करने वाले समझौते की 107वीं वर्षगांठ याद कर रहा है। रिमेम्बरेंस डे पर उन सभी लोगों को सम्मान दिया जाता है जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई। साल 2025 वर्ल्ड वॉर टू के 1945 में समाप्त होने के 80 साल पूरे होने का भी साल है। देशभर में मेमोरियल्स पर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2020 के चुनाव हार को पलटने की कोशिश करने के आरोप में दर्जनों सहयोगियों को माफ किया है, जिसमें रूडी गिलानी, मार्क मीडोज, जेफरी क्लार्क और सिडनी पावल शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 77 लोगों की इस माफी का उद्देश्य एक गंभीर राष्ट्रीय अन्याय को समाप्त करना और राष्ट्रीय पुनर्मिलन को बढ़ावा देना है। जस्टिस डिपार्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों द्वारा जो बाइडेन की 2020 की जीत को पलटने के लिए अल्टरनेटिव स्टेट इलेक्टर्स जमा करने के प्रयासों की जांच कर रहा था। ये पार्डन्स या माफी केवल फेडरल चार्जेस पर लागू होते हैं और राज्य मामलों को प्रभावित नहीं करते, और डोनाल्ड ट्रंप भी खुद इसमें शामिल नहीं थे। और अब खबर भारत से। न्यू दिल्ली पुलिस के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक रेड फोर्ट के पास हुए एक कार धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 19 लोग घायल हुए। फायर सर्विसेज का कहना है कि धमाके की सूचना मिलते ही कई फायर ट्रक घटनास्थल पर पहुंचे, जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के एक गेट के पास था। धमाके का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थानीय मीडिया को बताया कि रेड फोर्ट के पास एक ट्रैफिक सिग्नल के पास ह्यूंडई i20 कार में धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कैमरों से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज जांच का हिस्सा बनेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, दिल्ली में आज शाम हुए धमाके में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS South Asian के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।